रब्बना वजालना मुस्लिमैनी, अब उन्हीं की दुआ की आगे कंटिन्यूएशन है। ए हमारे रब, बना दे हमको फरमा बरदार दोनों को, हम दोनों को फरमा बरदार अपने लिए। अब देखें वो कितने फरमा बरदार ऑलरेडी हैं, लेकिन दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, इसलिए कि इंसान को हमेशा इस चीज की जरूरत रहती है कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे। यानी इसलिए क्योंकि इंसान को पता नहीं ना होता कि आज अल्लाह का फरमाबरदार है, कल हालात कैसे हो, कल ईमान का लेवल क्या हो। तो यानी इसको कायम रखना, हमें बनाए रखना, हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाना, हमें जमाए रखना। कितना इंसान को पता चलता है ना कि देखो इतने ऊंचे मकाम पे भी पहुंच के ये डर रखते हैं कि अल्लाह पता नहीं ये ना हो कि कबूली ना हो हमसे, अल्लाह पता नहीं ये ना हो कि कल को क्या हालात हो। अल्लाह हमें हमेशा फरमा बरदार रखना। तो हम सबको कितना ज्यादा इसमें डरते रहना चाहिए कि आज तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं कुछ सीख रही हूँ या कुछ समझ रही हूँ या कोई बात कर रही हूँ या हिदायत की तरफ आ रही हूँ। ए अल्लाह, कल को मेरी किसी गलती की वजह से, मेरी किसी बात की वजह से ऐसा ना कहीं हो कि मुझसे ये तौफीक छिन जाए। कभी भी फख्र ना करें, कभी गरूर ना करें अपने किसी नेकी पे, और कभी अपनी नेकी को काफी ना समझे। जो काफी समझता होगा वो ये नहीं कहेगा रब्बा ना तकबल मिन्ना। देखिए इतनी नेकियां करके भी इन्होंने काफी नहीं समझा, उसको क्या परवाह, मैंने ऑलरेडी इतनी करनी है, अब ये कबूल होना हो फिर क्या फर्क पड़ता। ये वही फिक्र करेगा ना जो यही समझेगा कि अल्लाह अभी भी काफी नहीं है, अभी भी हक नहीं अदा हुआ, अल्लाह अभी भी नहीं मैंने कुछ किया। ये कौन कह रहे हैं सोचेगा। हम क्यों छोटी छोटी, देखिए ये शैतान के वसवसे हैं, छोटी छोटी चीजें करके हम सोचने लगते हैं हमने कितना बड़ा मार्का मार लिया, हम कितने पहुंचे हुए बन गए। कोई पता नहीं है, आज अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो भी अल्लाह ही की देन है, कल वो चाहे तौफीक छीन ले तो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हमें बनाए रखना मुस्लिमीन, अल्लाह फरमा बरदार रखना अपना। और फिर सबमिशन मांग रहे हैं ना कि अल्लाह अपनी इताअत गुजार रखना, लक्का लिए अपने, सिर्फ अपने लिए। वमिन जुर्रियतिना, ए हम अल्लाह हमारे, हमारी औलादों में से भी, हमारी जुर्रियत में से भी उम्मत मुस्लिमत अल्लाह, अल्लाह एक ऐसी जमात जरूर रहे, क्योंकि पता है ना कि एक जालिम भी होंगे उनमें, तो ए अल्लाह लेकिन एक जमात ऐसी जरूर रहे जो तेरी फरमा बरदार हो। देखिए उनकी दुआ नस्लों तक के लिए, हम अपनी औलाद तक दुआ मांग लेते हैं, आगे नस्लों तक सोचते भी नहीं, लेकिन उनकी दुआएं आगे तक है कि अल्लाह फरमा बरदारी सिर्फ हम तक नहीं है, नहीं कि हम ही सिर्फ फरमा बरदार, अल्लाह आगे भी। और यहाँ पे देखिए हर कदम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ताकि पता चले कि ये वही नस्ले इब्राहिमी है जो आगे चल के फिर उम्मत मुस्लिमा बनी, नस्ले इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से चली, क्योंकि उन्होंने दुआ कर रहे हैं ना वमिन दुर्रियतिना। यहाँ पे इसहाक अलैहिस्सलाम तो नहीं है, बनी इसराइल में से नहीं होगी उम्मत मुस्लिमा, ये होगी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत, क्योंकि उन्होंने ये दुआ की। वो अरिना मनासिकना, और ए हमारे रब हमें दिखा दे हमारी इबादत के अल्लाह तरीके दिखा दे। इबादत के तरीके क्या, यानी किस तरह हम तेरी इबादत करें जिससे तू राजी होता हो। समझ आई बात। देखिए हाँ, वरना हम सोचते क्या है कि नियत काफी होती है, हमारी नियत अच्छी है तो बस काम चलता रहता है, हम यही इसी को अपने लिए काफी समझते हैं। हम बहुत, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर बड़ी लगन है, हमारे अंदर बहुत खैर है। अब जो भी आपके अंदर जज्बे हैं, सिर्फ बोलने से, नियतें रखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जैसा तरीका उसको पसंद है उसके मुताबिक उसकी इबादत ना करें। वो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह दिखा दे। अब अल्लाह ताला कैसे दिखाएगा, हो सकता है ख्वाब में दिखा दे, हो सकता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके सिखा दे, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, पता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके नमाज सिखाई थी, पढ़ के दिखाई थी। तो अल्लाह हमें दिखा देना अल्लाह ऐसे ही, ताकि हम वैसे ही करें। देखो इससे पता चलता है ना उनको कितना शौक है अभी भी, हालांकि अल्लाह के फरमा बरदार है, लेकिन कैसा शौक है कि हम अल्लाह की वैसी इबादत करें जैसे उसको पसंद है। ये नहीं कि हम बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब हमें इसमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं कि कैसे अल्लाह ताला को पसंद है, किससे वो राजी होता हो, बस हमने कर ली ना, हमारी नीयत अच्छी है, वो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि मैंने उसके लिए नमाज पढ़ी है तो ठीक है। नहीं, ये काफी नहीं होता। हम देखें एक नमाज को ही ले लो, हम कभी ये सोचते हैं कि हम ये देखें कि अल्लाह ताला को किस तरह पसंद है, क्योंकि जो उसकी पसंद है वो तरीका उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ के दिखा दी, रोजा रख के दिखा दिया, हज करके दिखा दिया, बल्कि फरमाया मेरे से ये हज के तरीके सीख लो, हो सकता है इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर ना हूं। तो क्या हम इतनी फिक्र करते हैं कि हम अल्लाह के पसंदीदा तरीकों के मुताबिक इबादत करें, और ये हमारी ख्वाहिश हो कि हम सीख लें, हम देख लें, हमें पता चल जाए? हम तो बॉदर ही नहीं करते। बचपन से जो सीख लिया बस सीख लिया, जैसे किसी ने नमाज पढ़ा दी बस वैसे ही सीख लिया, उसके बाद ये नहीं सोचा कि मैं देखूं कि नमाज नबी क्या थी, कैसी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी। जो कुरान किसी ने पढ़ा दिया जैसे जैसा तैसा सीख लिया, उसके बाद ये नहीं बॉदर करना कि मैं वैसे कुरान पढ़ना सीखूं मेरे अल्लाह को पसंद आए, जो जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताया जो सही तरीका है। हर इबादत के तरीके में देख लें, हम बॉदर नहीं करते। हम क्या कह देते हैं फौरन, मेरी नीयत तो अच्छी है ना, अल्लाह को मेरी नीयत का पता है। मेरी नीयत थी तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है ना। देखो वो इतने बड़े पैगंबर होके, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, दोनों कह रहे हैं कि अल्लाह हमें इबादत के तरीके दिखा दे। और मकसद क्या होता है कि हम उस तरह से इबादत करके तुझे खुश कर सके, तुझे राजी कर सके। कितना कुछ है ना हमारे सीखने के लिए नायाब। और तू भलाई ना, अल्लाह हम पर मेहरबान हो जा, हमारी तौबा को कबूल कर ले। इस बात पे तौबा, हाँ अल्लाह का घर बनाया, कह रहे हैं हमारी तौबा कबूल कर लेना, हम पर मेहरबान हो जाना। हमें तो कोई कहे कि तौबा कर लो तो हम कहते हैं हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिस पे तौबा करें, और अगर कोई हम दो चार नेकी के काम कर रहे हो फिर तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम तौबा इस्तगफार करें किस बात पे। हम कौन सा कुछ करते हैं, हम क्या कर रहे हैं जो हम तौबा करें, क्या किया है मैंने? और ये काबा की तामीर करके कह रहे हैं कि अल्लाह तो भलाई ना, सोचा आपने क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि कोई नेकी भी इंसान करता है ना तो उसमें पता नहीं कितनी कमियां रह जाती हैं, कितनी कोताहियां रह जाती हैं, कितनी, जाहिर है अल्लाह ताला की जैसे शायाने शान काम होना चाहिए वैसे तो इंसान कभी नहीं कर सकता ना, चाहे पैगम्बर ही क्यों ना हो। हाँ हमारे जैसों को तो पता नहीं, मैं कहती हूँ नमाज पढ़ के भी रोजा रख के भी तौबा ही करनी चाहिए कि अल्लाह जो हमारी नमाजों के हाल हैं और जो हमारी और इबादात के हाल हैं। सोचे वो लोग कह रहे हैं तो अल्लाह इसके ऊपर हमारी तौबा कबूल कर, हम पे शफकत की नजर फरमा, हम पे मेहरबान हो जा, हमें कदम कदम पे हमें तो हर वक्त तौबा करनी चाहिए, नेकी करके फूले नहीं तौबा करें। अल्लाह फिर भी नहीं हक अदा हुआ, अल्लाह फिर भी पता नहीं यहाँ पे कितनी गलतियां हो गई हो इस काम में। इन्ना कंत तवाब रहीम, बेशक तू ही है तू तौबा कबूल करने वाला, तवाब यानी बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, बार बार तौबा कबूल करने वाला, और रहीम बार बार रहम करने वाला तू ही है। तो ऐसे रब के सामने हम अपनी इल्तजा रखते हैं, और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला कैसा है, तवाब कैसा है कि वो तो मुंतजर रहता है अपने बंदे की तौबा का कि बंदा कब तौबा करे तो मैं उसको माफ करूं। अल्लाह ताला तो खुश होते हैं इंसान की तौबा से, वो तवाब है और वो इतना रहम करने वाला है कि बंदा जो ही उसकी तरफ देखे पलटता है, वो रहमत की नजर उसके ऊपर कर देता है, चाहे जितने भी गुनाह लेकर आए। कितनी सारी हमारे लिए अमल की बातें इन आयात में, तो कितनी सारी हमारे लिए अमल की बातें इन आयात के अंदर कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, नेकी करके हमारे जहन में क्या बात होनी चाहिए, नेकी करके हमारा अमल क्या होना चाहिए, हमें मुंह से क्या बोलना है। रब्बना तकबल मिन्ना भी, और अल्लाह हमारी तौबा भी कबूल कर दे, तौबा इस्तगफार भी करनी है हमें और बहुत ज्यादा करनी है। तो अब ये कहाँ रह जाता है कि हम ये छोटे छोटे काम करके
और उसके बाद सोच ले कि जो है ना हम बस काफी हो गया और हम ठीक हैं और वी आर सेफ और हमने तो बहुत कुछ कर लिया और अब तो कुछ रह ही नहीं गया।
देखे रब्बना वबअथनीहिम रसूलम, फिर और दुआ कर, जाहिरा नस्लों के लिए दुआ की तो अल्लाह इनको हिदायत पे रखने के लिए, इनकी हिदायत के लिए भी कोई इंतजाम की होना चाहिए ना। अब एक दुआ है रसूल के लिए कि अल्लाह भेज इनमें, इनमें किन में, उस वक्त तो साथ यही है ना इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उनके साथ ही दुआ की है ना कि हमारी जुरियत में से उम्मते मुस्लिमा को उठाना, तो इनमें से एक रसूल भेजना, इन यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही मांगे है ना एक रसूल, मिन हुम इनमें से। अब ये यहूद के लिए भी एक बात है कि उनको भी ये समझ आ जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खुद दुआ मांगी थी कि इनमें से एक रसूल भेज, तो अब बनी इसराइल में से ही रसूल आएगा, फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि हम में से नहीं आया तो इसलिए हमने नहीं माना। तो उनकी ये दुआ थी कि अल्लाह आखिरी नबी इनमें भेज, इनमें एक रसूल भेज जो मिन हुम इन्हीं में से हो। क्यों इन्हीं में से हो, इसकी क्या हिकमत है, कोई बाहर से क्यों ना हो? इसलिए कि जो जिन लोगों में से होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इन लोगों की इन आदात क्या है, अतवार क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका कल्चर क्या है, इनकी जुबान क्या है, ये सब चीजें जानता है ना। अब मिसाल के तौर पे आप एक अंग्रेज को भेज दें किसी सिंध के गांव में और उसको कहें कि वहां पे जाके इनको बातें बताओ, कोई तालीम दो, तो कितना कम्युनिकेशन गैप होगा ना, वो उनको समझता होगा बात ना, वो ना उसको पता है कि इनका कल्चर क्या है, ना उसको ये पता है कि इनके तौर तरीके क्या है, ना उसको पता है इनकी ज़हनियत क्या होती है, क्या चीजें इनके लिए अहम है क्या नहीं है, कितना मुश्किल है ना उसके लिए। तो इसलिए इन्हीं में से भेज जो इनको अंडरस्टैंड करता हो, इनकी जुबान में बोलता हो, वो क्या करे आके, ये भी दुआ मांगी, ये चार कामों की दुआ मांगी, यतलू अलैहिम आयाती का, वो पढ़े तेरी आयतें इनके ऊपर, ए अल्लाह ऐसे एक रसूल को भेज जो तेरी आयतें इनको पढ़ के सुनाए, यानी तेरा कलाम इनको पढ़ के सुनाए, तिलावत करे। अब तिलावत का माना तो आप समझ चुके हैं ना, फॉलो करना, पढ़ना ऐसे कि समझ भी आ रही हो, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या आ जाता है फिर, इसमें अल्फाज आ जाते हैं कि अल्फाज को सही तरीके से अदा करना, उनकी तजवीद, ये सब चीज इसमें आ जाती है। और हक्का तिलावती ही आपने पिछली आयात में पढ़ा है, वो बहुत खूबसूरती से उसके अंदर सिर्फ दो अल्फाज में बता दिया गया पूरा हक्का तिलावती ही, कि कौन लोग हैं जो इस किताब पे ईमान लाने वाले हैं, जो इसकी तिलावत का हक अदा करें। तो वो रसूल क्या करता हो, अल्लाह तेरा कलाम इनको पढ़ के सुनाए, फिर क्या करे, और नंबर टू क्या करे, वह युअल्लिमुहुमुल किताब, और अल्लाह इनको तालीम दे किताब की। तालीम देना अलग बात होती है और वैसे एक बताना अलग बात होती है, अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन देखें आप एक बात को गौर करें, वो लोग तो अरबी थे, उनको तो कोई, अब हम सोचें कि हम तालीम लें हमें तो कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हम अरबी नहीं जानते, वो तो अरबी जानते थे, क्या उनको सिर्फ तिलावत करना उनके सामने क्या ये काफी नहीं था? नहीं, तालीम भी जरूरी थी कि इस किताब की तालीम दी जाए, और तालीम कैसे होती है ये भी हम इंशाल्लाह अभी बात करते हैं। तालीम के लिए मुअल्लिम चाहिए होता है ना, और तालीम एक तरीके के साथ दी जाती है, तालीम दे किताब की और हिकमत की। हिकमत क्या है कि किस तरह से किताब पे अमल किया जाए, ये है हिकमत। ये अमल किसने हमें करके बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। तो अमल के तरीके, अमल कैसे होगा, ये सब हिकमत है। अब ये देखें कि ये हिकमत हमें किसने दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी ना, तो यानी हिकमत क्या है, हदीस है, सुन्नत है, ये हिकमत है। वह युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, यानी इनकी तरबियत करे, सिर्फ तालीम ले लेना काफी नहीं है, तरबियत भी। तज़किया का मतलब क्या होता है, क्लीन्स करना, प्योरीफाई करना स्पिरिचुअली, बाहर से नहीं, बाहर से तो बहुत सो लोग अपने आप को क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन अंदर से किसी को पाक
पाक साफ करना, और इसमें दो चीजें आती हैं, नंबर वन बुराई को निकालना और नंबर टू नेकी को ग्रो करना किसी के अंदर, नशो नुमा देना। ये दो चीजें हैं जिससे तज़किया बनता है। अगर किसी का तज़किया करना है तो उसके अंदर से बुराइयों को निकालना और नेकी को उसके अंदर डालना। जैसे बिल्कुल जैसे आप जमीन में कुछ उगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसकी झाड़ झंकार गंद पहले साफ करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। यही है तज़किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी दूर तक सोचा कि ये इंतजाम होना चाहिए लोगों के लिए ताकि वो उम्मत मुस्लिमा बने। नकंतल अजीज उल हकीम, अल्लाह तू जबरदस्त है, गालिब है, हिकमत वाला। अब ये काम कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया था जिससे वो अरब के जाहिल लोग सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन्हु वो बन गए। वो बद्दू कैसे चेंज हुए? ये चार काम किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन चारों कामों की बेस क्या है, क्या चीज है जो इनमें कॉमन नजर आ रही है? किताब, किताब है ना, कुरान है, कुरान है जो कॉमन नजर आ रहा है। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से उन लोगों को बदल दिया था, और आज भी अगर किसी सोसाइटी को खुद को बदलना है तो यही चार काम करने होंगे। देखें, एक इंडिविजुअल को बदलना है या सोसाइटी को बदलना है, जैसे इंडिविजुअल बदले जाते हैं, जब इंडिविजुअल्स बदलते हैं तो सोसाइटी बदल जाती है ना। एक बंदे को भी आपने बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? कैसे बदलेंगे आप उसको? लेक्चर दे के, डांट के, धूस से, हम जैसे अपने बच्चों को करते हैं, बस नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ी तो ये है वो, इससे नहीं चेंज आती। बात क्या है, सबसे पहले उनकी सोच को जानना जाए, उनकी थिंकिंग को जानना जाए। जब ये जान लिया आपने तो सोच को बदलने पे काम करना होगा। और कैसे सोच को बदलेंगे? अल्लाह और आखिरत पे ईमान उनके अंदर रासिक करना होगा, पक्का करना होगा। जब सोच बदलती है ना तो अमल भी बदल जाता है। सोच अगर सही नहीं है तो अमल कभी नहीं बदल सकता। आज कोई आपकी धोस में या बातों में या आपके प्रेशर में कोई काम कर भी लेगा, जैसे बाद लोग समझते हैं कि फिर हमने प्रेशर से ही धोस से ही हमने सारा इस्लाम नाफिज कर देना, ऐसे नहीं है। पहले जमीन को तैयार करना होगा। जब ये जमीन तैयार होगी तो फिर इसमें बीज डाला जाता है ना। अगर जमीन तैयार ना हो और आप बीज डाल दें तो क्या होता है, बीज भी जाया हो जाएगा। तो जब अल्लाह ताला पे ईमान होगा, यकीन होगा, कुरान पे ईमान होगा, क़यामत पे ईमान होगा, तो फिर किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं होगी, फिर पर्दे की हिकमतें बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर ये नहीं कहना की जरूरत होगी कि इतनी लंबी लंबी तकरीरें की जाएं, नहीं इसमें ये हिकमत है, इसमें तुम्हारे लिए ये फायदा है। फिर इंसान खुद पूछता है कि बताओ अल्लाह का हुक्म क्या है। आगे आप पढ़ेंगे, सहाबा आके पूछते थे बताइए हम क्या खर्च करें। तो फिर तो सिर्फ उसके सामने ये कह दिया जाए ना अल्लाह का हुक्म ये है, तो वही उसके लिए काफी होता है। इसलिए कि अगर वो अल्लाह को मानता है तो वो आगे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसको पता है कि अल्लाह का हक है मेरे ऊपर, वो जो हुक्म दे मुझे मानना है, मुझे समय ना आता ना करना है, ये मेरे रब का हुक्म है। उसके लिए ये कितनी बड़ी बात होती है। तो फिर उसको लेक्चर देना और समझाना और ये चीजें नहीं चाहिए होती। और अगर ईमान ही नहीं है, ईमान पक्का नहीं है, तो सबसे पहले ईमान को सही करना पड़ेगा ना। सहाबा कराम की जिंदगियां देखें कैसे पलट गई, क्या थे और क्या बन गए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी प्रोसेस को उनके साथ किया। सबसे पहले यतलू अलैहिम आयातिका किया, पहले ऐसा कलाम चाहिए जो दिल को नरम कर दे, दिल की जमीन तैयार हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किताब और हिकमत की तालीम दी, उनको सिखाया। आप देखें, एक दफा कोई दर्स सुन लेने में और कोई बात सुन लेने में, जैसे आप लोगों में से अक्सर लोग कहते हैं हम फलां दर्स अटेंड कर लेते हैं तो काफी है। ठीक है, आप दर्स अटेंड करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो कुछ देर के लिए आपके ईमान को ताजा कर सकता है, करेगा, लेकिन वो देर पा नहीं होता। तालीम में और दर्स सुन लेने में या इसको दर्द समझने में कि ये जो क्लास है इसको बस एज अ दर्द मैं लिसनर के तौर पे सुन लूं, बहुत फर्क होता है। तालीम में क्या होता है, आपके बच्चे तालीम हासिल करते हैं ना, क्या होता है तालीम में? उसके लिए एक टीचर होता है, एक माहौल होता है, एक सिलेबस होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक पंक्चुअलिटी होती है, ये सब चीजें होती है ना तालीम के लिए। रेगुलर आपका बच्चा जाता है तो तालीम लेता है। ऐसे क्यों नहीं कर लेते, किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो किसी के पास बैठ के दो चार मेडिकल की बातें सुन ले और कहे चलो मैं इससे ही डॉक्टर बन जाऊंगी। ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं? क्यों वो तालीम लेते हैं, किसी तालीमी इदारे में क्यों जाते हैं, किसी टीचर से क्यों पढ़ते हैं, किसी सिलेबस को फॉलो क्यों करते हैं, रेगुलरली क्यों जाते हैं, क्यों इम्तिहान देते हैं, क्यों तैयारी करते हैं, क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि तालीम यही होती है। बाकी क्या होता है, बस ये इधर उधर से सुन ली चार बातें, उधर से सुन ली, उधर बैठ कर उधर चार बातें सुन ली, इधर चले गए, बस ये वक्त गुजारी का वो तो हो गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम मेहनत से कतराते हैं ना। उन्होंने ये नहीं कहा था, कुछ और लफ्ज नहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे तालीम का लफ्ज आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, मुअल्लिम, मैं मुअल्लिम हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम दी लोगों को, तो वो बद्दू भी ये कहते हैं कि भाई हम खुद ही, अगर देखें मुअल्लिम की जरूरत ही नहीं थी, किसी उस्ताद की जरूरत ही नहीं थी, तो ये कुरान क्या होता, किसी पहाड़ पे लोगों को मिल जाता, वहां से जाके ले आते, अरबी तो पहले ही जानते थे, कोई एक आध पढ़ के सुना देता उनको। लेकिन तालीम जरूरी है अगर बदलना है तो। किसी को बदलने के लिए एक इंसान की सोच को जब आप बदल देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अमल बदल जाता है। तो उसके लिए ये तरीका कार है, कैसे सोच बदलेगी, इस तालीम से बदलेगी, किताब की तालीम। तो पहले तिलावत भी सही करनी आनी चाहिए, उसके बाद बाकायदा तालीम हो, तब जिंदगियां बदलेंगी, तब फिर इंशाल्लाह ताला आप में से जो लोग माशाल्लाह कर चुके हैं, कोर्स भी कर लिया पहले, वो खुद देखें कि जब उन्होंने इस कुरान की तालीम नहीं ली थी उस वक्त जिंदगी कैसी थी, और जब तालीम ले ली उसके बाद जिंदगी में क्या फर्क है। जब अल्लाह ताला का हक पहचान लिया तो उस वक्त जिंदगी में क्या चेंज आए। सोच जब बदलती है ना इंसान की, तो उसका लाजमी नतीजा होता है कि फिर इंसान की प्रायोरिटीज बदल जाती है, फिर इंसान की पसंद और नापसंद बदल जाती है, फिर उसके गोल्स बदल जाते हैं, फिर उसकी लाइफ में जो एक्टिविटीज है वो बदल जाती है, वो टोटली एक नया इंसान बन जाता है। और जब ये चेंज आती है तो फिर उस जाहिर है अमल में चेंज आ जाती है, अंदर जो बदल गया, फिर चिराग से चिराग रोशन होता है, आगे से आगे चेंज चलती चली जाती है। तो इसके लिए तालीम किताब की जरूरी है, यही उस वक्त हुआ था, यही आज जरूरत है। अगर आपने माहौल को बदलना है, अगर आपने अपने घरों को बदलना है, अगर आपने अपनी सोसाइटीज को बदलना है, ये काम करना होगा। वल हिकमत, और हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अमल करके दिखाया, कैसे बताया, इसमें तफसीर भी आ जाती है कुरान की, इसमें हदीस भी आ जाती है, क्योंकि तफसीर में भी क्या है, हदीस ही है ना, तफसीर से ही हमें पता चलता है, हम अपनी तौर पे तफसीर नहीं कर सकते, हमें कुरान की तफसीर क्या, सारे उसमें क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का ये मतलब बताया, इस पे ऐसे अमल किया। और वह युजक्की है, और तजकिया करें उनका, सिर्फ फिर किताबें ना पढ़ा दे, फिर उनको यानी उनकी तरबियत भी करे, उनकी ट्रेनिंग भी करे, उनके अंदर से जो बुरे काम है उनको बताए कि ये नहीं करना। तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम की, कैसे उनके अंदर नेकियों के फिर बीज बोए। तो ये दुआ मांगी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। ये उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी थी, ठीक है। ये चार काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए तो वो माशरा बदला। अच्छा, अब क्या है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन ये काम करेगा, कौन करेगा बताएं, कोई और नबी आना है या फरिश्ते आसमान से उतरने हैं, कौन करेगा फिर ये काम, मैं और आप ही तो करेंगे, और कौन करेगा। यही काम हमने करना है। हम रोते तो बहुत हैं, हमारे ये हो गया, ये हमारे देखो आज क्या सोसाइटी का हाल है, ऐसे है वैसे है, क्योंकि ये काम नहीं हो रहा। इस काम को करें, इसको फैलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस उम्मत की जिम्मेदारी है, इमामत की यही तो जिम्मेदारी है। ये उम्मत मुस्लिमा को जो मिली है अब इमामत, कयामत तक उम्मत मुस्लिमा को ही इमामत मिली रहेगी, तो उम्मत मुस्लिमा को ये काम करना है। इमामत में मैंने अभी आपको बताया था ना, हिदायत है, इल्म है, मार्फत है, अल्लाह की पहचान है, तो ये इनको ये करना है कि लोगों तक ये पहुंचानी है, ये इल्म भी, ये हिदायत भी, ये सारे काम इनको करने हैं। लेकिन किताब की तरफ हम आते नहीं, किताब से हमारी गफलत है, खास तौर पे इसकी तालीम को तो बिल्कुल नहीं हम लेना चाहते। हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए क्या, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि हमने अपने टाइम को उन जगहों पे लगाना शुरू कर दिया जिनका ना दुनिया का फायदा और ना दीन का। टाइम इसलिए नहीं है कि हम फेसबुक पे रहते हैं, हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते रहते हैं, हम ईमेल्स करते रहते हैं, हम टेक्सटिंग करते रहते हैं, हम ऑल द टाइम इन्हीं एक्टिविटीज में, या घरों की सजावट और इन्हीं की खिदमतों में, यही है दो चार काम, और क्या। तो वक्त तभी निकलेगा जब आप अपनी जिंदगी से फालतू कामों को निकाल दें, वो दुनिया के मामले में कम पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, दुनिया के मामले में कम पे कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन दीन के मामले में आला से आला मकासिद रखें। तो अल्लाह ताला ने क्या जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर ये डाली है, वही जिम्मेदारी जो पहले रसूल की थी, अब उस उम्मत की जिम्मेदारी है। और उन्होंने क्या फरमाया, इन्नता अंतल अजीज उल हकीम, ए अल्लाह तू जबरदस्त भी है, शरीयत तूने दी है, तू तेरे पास अथॉरिटी है, किताब तेरी तरफ से आई है, और तू हिकमतों वाला है। वमई यरगबु अम मिल्लति इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सह, जो और कौन है जो मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौन सा तरीका था, आगे अगली आयत में आएगा, लेकिन ये वही तरीका था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे ही थे। तो जो तालीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, अगर कोई इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रिजेक्ट करता है, उससे मुंह मोड़ता है, उससे दूर होता है, तो इसका मतलब उसने किसके तरीके से दूरी इख्तियार की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि सेम है ना। ये वही करेगा जो बेवकूफ है, जो अपने आप को जिसने बेवकूफ बनाया, क्योंकि जो अकल वाला होगा वो तो कभी ऐसी हमाकत कर नहीं सकता। ये लोग कहते थे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से, क्या तुम इब्राहिम के तरीके से हो जबकि तुम उनकी तालीमात से ही मुंह मोड़ रहे हो, ये वही तो तालीमात हैं। और इसी वजह से, इब्राहिम के तरीके की वजह से ही हमने उनको क्या किया, वलकद इस्तफईनाहु फिद दुनिया, उनको हमने चुन लिया इस दुनिया में, वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी वो जरूर सालिहीन के साथ होंगे। तमाम नेकों की जमात जो है ना, उसको सम अप करके क्या कह दिया गया, सालिहीन, जिसमें अंबिया भी हैं, शुहदा भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कंपनी में रहना चाहता है आखिरत में, उसको सालिहीन में से होना पड़ेगा, उसको अपने आप को इनमें शामिल करना पड़ेगा। तो उनको हमने दुनिया में भी चुन लिया कि दुनिया में भी उनको अपना खलील अल्लाह ताला ने बनाया, हर मजहब वाले उनकी कदर करते हैं, उम्मत मुस्लिमा में हर बंदा उनके ऊपर दरूद भेजता है जब दरूद हम पढ़ते हैं। तो कौन है जो इनसे मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से, मगर वही हो सकता है जिसने अपने आप को बेवकूफ बनाया, क्योंकि इब्राहिम को तो हमने चुन लिया था, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सालेहीन में से होंगे। तो जो इनके तरीके से फिरेगा तो दुनिया में भी नहीं चुना जाएगा और आखिरत में भी सालेहीन में से नहीं होगा, इसका मतलब है। इज काला लहू रब्बू अस्लिम, उनका तरीका क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि जब कभी उनसे कहा उनके रब ने, अस्लिम फरमा बरदार हो जाओ, जब जब अल्लाह ताला ने उनको कोई हुक्म दिया और फरमाया कि सर झुका लो, अपने आप को रब के हवाले कर दो, तो क्या, कौल असलम तो रब्बिल आलमीन, फौरन उन्होंने कहा। आप देखिए मुफसरीन फरमाते हैं कि देखिए असलम और काला के दरमियान ना वाह है, ना सुम्मा है, ना फा है, कुछ भी नहीं है, फौरन आगे आया काला असलम तो रब्बिल आलमीन। क्यों, इसलिए कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा सी देर के लिए सोचते तक नहीं थे अल्लाह का हुक्म मानने में, फौरन इताअत करते थे, फौरन फरमाया असलम तू, मैंने मान लिया, मैंने सर झुका दिया, किसके लिए? ले रब्बिल आलमीन। ये नहीं फरमाया असलम तु लका, अल्लाह तेरे लिए मैं फरमा बरदार हो गया, ये भी तो कह सकते थे। फरमाया ली रब्बिल आलमीन यानी रब्बिल आलमीन के लिए, यानी अल्लाह तू तो इस लायक ही है। एक तो इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर दी, नंबर टू क्या है इसमें कि अल्लाह तू इस लायक है कि तेरी फरमा बरदारी की जाए, मैं क्यों ना तेरी इताअत करूं जबकि तू तमाम आलमों का रब है। तो मेरा तेरी इताअत करना कोई बड़ा बहुत बड़े कोई मेरा एहसान नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्लाह मैं क्यों ना करूं, तू तो है ही इस लायक। कितनी इसमें हम्द भी हो गई, कितना प्यारा कलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस तरह की दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए मांगी। अल्लाह हमें ये दुआएं सिखा दे और हमसे वो काम ले ले जो उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे हैं अब, और वो है अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाना, उसकी किताब को आम करना, उसकी तालीम देना और इसकी किताब की तिलावत करना। यही चार काम ये जो आपकी क्लास में भी कहे जाते हैं, यही काम है तिलावत कि आप ये सही से तजवीद सीखें, हिफ्ज करें और तजवीद सीखें, और तालीम इस किताब की और हदीस भी इसमें आ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत अता फरमाए और ये इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين